जगत्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानम् ततो न विजुगुप्सते। सिक्स्थ मंत्र है और ये कहता है यह जो व्यक्ति सभी प्राणियों को व सभी चीजों को खुद में देखता है और खुद को सब में देखता है वो फिर किसी से नफरत नहीं करता। ए पर्सन हु सीज एवरीथिंग इन द सेल्फ मे बी सेंटिएंट और इनसेंटिएंट एंड द सेल्फ इन ऑल बीइंग्स और थिंग्स फील्स नो हैट्रेड बाय वर्च्यू ऑफ दिस रियलाइजेशन। देवियों सज्जनों हम कंटिन्यूटी में है। सबसे पहले ईशावास्यम पढ़ा, सब कुछ ईश्वर का है। फिर हमने कहा कि काम करते हुए ही दुनिया को एंजॉय करो, उसके बिना तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, बी एक्टिव। तीसरा बताया कि जो खुद को ठीक से नहीं समझता नहीं जानता उसका लाइफ मिजरेबल होता है और वो नरक का जीवन भोगता है। और आगे बताया कि वो जो खुद को जानना है, वो जो खुद जिसको आप कहते हो सेल्फ, उसके कुछ डिस्क्रिप्शंस बताए कि वो मूव नहीं करता पर हमेशा आगे रहता है, माइंड और सेंसेस उसको कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। अब अगर किसी ने उसको जान लिया तो क्या होता है? अगर किसी ने खुद को समझ लिया ठीक से, खुद को सेल्फ को जान लिया तो क्या होता है? जो पहला सिम्टम दिखता है, जो लोग नीचे बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं, क्योंकि जिनको थोड़ा नीचे बैठने में प्रॉब्लम है उनके लिए कम से कम सीट मिल जाए। तो होता क्या है कि हमारे जो सबसे पहला काम होता है कि हमारे अंदर जो हैट्रेड है, नफरत है, वो नष्ट हो जाता है। इस मंत्र में ये नहीं बोला कि जब आप खुद में सबको देखते हो या सब में खुद को देखते हो तो आपके अंदर प्रेम जाग जाता है, मतलब हैट्रेड का, नफरत का अपोजिट होता है प्यार करना, है ना? ऐसा नहीं बोला। प्यार क्या होता है? जब आप किसी के लिए अपना कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहते हो या खुश होते हो, किसी के लिए कुछ करके आपको अच्छा लगता है, कुछ करना चाहते हो, अपना कुछ कम हो जाए यू डोंट केयर, वो खुश हो, अपने आप को आप अपने आप को बड़े सारे कष्ट देते हो अपने बच्चों को पालने में, अपने स्पाउस के लिए, अपने मां बाप के लिए, जिनसे भी आप प्यार करते हो, अगर आपको नेम या फेम चाहिए तो आप उसके लिए कितनी कुर्बानियां देते हो। पॉलिटिकल लीडर्स को देखिए, लोग रात को 7-8 बजे घर में होते हैं, वो 12-1 बजे तक काम करते रहते हैं। तो जिस चीज से आप प्यार करते हो, वो आपकी कोई फैमिली मेंबर हो या कोई घर हो, धन हो, संपत्ति हो, नाम हो, फेम हो, आपको खुशी होती है। दूसरे लोगों को लगता होगा कि ये इतना कैसे सैक्रिफाइस, आपके लिए लगता होगा कि ये सैक्रिफाइस है, पर जो प्यार करता है जिस चीज को चाहता है वो उसको एंजॉय करता है छोड़ते हुए भी। और नफरत क्या है? ठीक अपोजिट है। आप उसका कुछ नुकसान करने के लिए भाव रखते हैं, अगर नुकसान कर भी नहीं सकते तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ उसका कम हो जाए। और प्यार और नफरत दोनों एक दूसरे से बड़े जुड़े हुए चीजें होती हैं। और बड़े मजेदार चीज आप नोट करिएगा, हमारी नफरत वहां सबसे ज्यादा होती है जिसे हम प्यार करते थे। मतलब प्यार बहुत जितना ज्यादा गहराई से आप किसी से करते हैं और किसी कारण से वो प्यार के लायक नहीं रहा तो नफरत कुछ ज्यादा ही हो जाता है। प्यार रहा नहीं क्यों? शादी के बाद तलाक हो जाती है, मां बाप बच्चों में नहीं पड़ता है, क्यों? या और भी फ्रेंडशिप में गड़बड़ी होती है? क्योंकि जिसे हम प्यार कहते हैं वो अपने आप में भी उसका एक सेल्फ इंटरेस्ट रहता है। प्यार का बड़ा आइडियलिस्टिक परिभाषा डिस्क्रिप्शन आप कैसा भी करें, पर बड़ा प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन है जिससे आपको खुशी मिले, खुद को खुशी मिले, उसी से आप प्यार करते हैं। क्योंकि वहां एक कंडीशन छुपा हुआ होता है, आपको खुशी मिलती है, और जहां भी कंडीशन होता है वो कंडीशन अगर चेंज हो जाए तो फिर अपोजिट होने लगता है। कंडीशन ये है कि वो मुझे खुशी मिलती है, खुशी मिलती है इसीलिए कि जो मैं चाहता हूं वही कुछ हो रहा है, तो आप प्यार करते हैं। और जैसे ही आपने देखा कुछ हो रहा है जो मुझे पसंद नहीं है, आपके इरिटेशन शुरू होने लगता है और धीरे 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 लव गायब होने लगता है, उसकी जगह हैट्रेड होने लगता है। वो हस्बैंड एंड वाइफ की हो, बच्चे और माँ बाप हो, फ्रेंड्स हो, दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज हो, आपके ऑफिस में हो, कहीं भी हो, जब कोई कहता है कि मैं इन चीज से बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद में मैत्रेयी यही याज्ञवल्क्य से कहते हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं वानप्रस्थ संन्यास में जाना चाहता हूं, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो दुनिया को एंजॉय करो, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, वो सब तुम्हारी है, एंजॉय करो, या तुम्हारी इच्छा, तुम जहां जाना चाहे जाओ, तुम्हारी जैसी इच्छा हो, मैं तो संन्यास में चला, प्रभु की भक्ति में चला, तुम्हें जहां अच्छा लगे जाओ, जो तुम्हें प्यारा हो, प्रिय हो। मैत्रेयी कहते हैं ये प्रिय या प्यार क्या होता है वो समझाते हैं। बोले आत्मनो प्रियाय सर्वमपि प्रियं भवति, जो मुझे, जिससे मुझे खुशी मिले उसी से मैं प्यार करता हूं या करती हूं, ये इंसान का स्वभाव है। बच्चों से भी हो, पति या पत्नी से हो, किसी भी इंसान से हमारा प्यार, सो कॉल्ड प्यार, तब तक रहता है जब तक उससे हमारी खुशी बनी हो। अगर वो ऐसा कुछ करें जो मुझे पसंद नहीं है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता, अगर बार बार वो रिपीटेशन हो तो वो प्यार फिर धीरे 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 नफरत में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ये प्यार और नफरत कोई ऐसी चीज नहीं है। जितना हम खुद को ज्यादा प्यार करने लगेंगे, हम दूसरों से भी प्यार करने लगेंगे। पर इंसान का और एक मनुष्य का एक और डिस्क्रिप्शन है, परिभाषा है, कि ये जो सात्विकता है, जो प्योरिटी है, लव उस प्योरिटी का, जो प्रेम है उस प्योरिटी का रिफ्लेक्शन होता है। और हम जब बाय नेचर, बाय असेंस, जो हमारी डिविनिटी है वो प्योर होए, और क्योंकि हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, इसलिए जो प्रेम है वो आत्मा का अपना नेचर होता है। अगर उस लेवल पर आप प्रेम करते हैं, पर उस लेवल पर प्रेम आप करते हैं तभी जब आपके एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं, जब अपनी खुशी आप नहीं ढूंढते हैं, और अगर आप कभी खुद को रियलाइज करने लग जाएं मैं क्या हूं, अपने असली स्वरूप को जानने लग जाएं, तो फिर वो जो प्रेम होता है वो बड़ा नेचुरल होता है, वो बड़ा डिवाइन होता है, वो बड़ा, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और वो तो नेचुरली पान के पत्ते की तरह तो बिल्कुल नहीं होता है ना। पान के पत्ते समझते हैं, दिल की जो पिक्चर है उसकी तरह तो बिल्कुल नहीं होता है। इट्स बियॉन्ड द इमोशनल अटैचमेंट। जिसे हम प्यार कहते हैं वो एक इमोशन है, वो एक पर्टिकुलर हार्मोन से अब आगे पीछे होता रहता है। वो हार्मोन्स भी अप डाउन होते रहते हैं हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स के बेस पर। और उस प्यार को अगर बाहर लाना हो तो ये मंत्र कहता है कि जब आप सब में खुद को देखते हो या खुद में सबको देखने लगते हो तो आपकी नफरत के भाव खत्म हो जाते हैं। नफरत के भाव, क्योंकि आप लाइक डिसलाइक से ऊपर उठ जाते हैं। ध्यान रखिए, जिसे हम सो कॉल्ड प्यार कहते हैं कॉमन वे में, वो नफरत का सिर्फ एक दूसरा, कॉइन का एक दूसरा साइड है। बस थोड़ा सा गड़बड़ करने की जरूरत है। आप टेस्ट करना चाहते हैं कि आपके आपको जो, जिससे आपको लगता है कि ये मेरे से बहुत प्यार करता है या करती है, थोड़ा पानी को टेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा कंटिन्यूअसली कुछ करिए जो उसको पसंद नहीं है, फिर देखिए कितना प्यार निकलता है। अगर उसके बावजूद भी प्यार निकले तो मान लीजिए कि थोड़ा सब्सटेंस है इसमें, और नहीं तो समझ लीजिए कि काम चलाओ है, इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है, जैसे कि हम सब गुजारते हैं। दैट्स ओके, जिंदा तो रहना है, और रहने के लिए एक सोसाइटी चाहिए, कुछ लोग चाहिए। पर उपनिषद उस दूसरे लेवल के प्यार की बात कर रहा है जहां फिर मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर वो जो प्रेम होगा वो फिर आपके किसी रिलेटिव से नहीं होगा, वो सिर्फ पर्टिकुलर डॉग से होगा और काव से नहीं होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि कुत्ते को मारना बड़ा घिनौना है, वो गाय को घोड़े को मारना ओके ओके है, ऐसा नहीं चलेगा। फिर तो आप चींटी को भी मारते हुए देखोगे तो भी दर्द होगा। वो उस लेवल का प्यार होता है। फिर वो प्यार क्यों नहीं आता है? क्योंकि जिस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है, बॉडी है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, बहुत कुछ, उस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा डिफॉल्ट है कि हम बाहरी दुनिया से हमें इंटरैक्ट करना पड़ता है, और बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करते करते बहुत सारे अच्छी बुरी चीजें हमारे अंदर आ जाता है। जैसे अगर आप अपने दरवाजे को कंटिन्यूअसली खुला रखें तो आप देखेंगे आपके घर में, सोफे में, चीजों में धूल जमने लग जाता है। और जहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, यूएसए में थोड़ी साफ सफाई ज्यादा अच्छी है, अब भारत में जो लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जहां भी रहते हैं, आपने देखा होगा, इवन आप दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके भी चले जाओ छुट्टी में, 15 दिन 20 दिन वैकेशन में, वापस आते हैं तो धूल जमा हुआ मिलता है। क्या करें, एटमोस्फियर में धूल जमा हुआ है। धूल आपकी घर के अंदर से पैदा नहीं होता है, बाहर से आता है। हमारे दुनिया के साथ रहने के कारण जो साइड इफेक्ट होता है हमारे अंदर, वो बुरी भावनाएं, जो जिसको आप गलत इमोशंस कहते हैं, वो गुस्सा हो, नफरत हो वगैरह वगैरह, ये सब आने लगता है। पर अंदर जो बाय नेचर आपका बना हुआ है वो तो आनंद से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ होता है, दिव्यता से भरा हुआ होता है। आप कह सकते हैं ये आपके परमानेंट हाउस फैमिली मेंबर्स हैं जो आपके घर में रहते हैं। नफरत जो है या गुस्सा है ये गेस्ट होते हैं, बाहर से आते हैं, बाहर चीजों से डील करते करते ऐसे हम बन जाते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जिसके घर में गेस्ट परमानेंटली रहने लग जाए ना, फिर घर में बड़ा क्लेश होता है, फिर बच्चे भी लड़ते हैं एक दूसरे से, वो लड़ाना शुरू कर, वो गेस्ट से तो लड़े ना लड़े, आप एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे, वो गेस्ट घर में रहेगा, कान भरेगा, ये चीजें बताएगा, ये बताएगा, फिर आप इरिटेट होने लग जाते हैं। गेस्ट को गेस्ट किस तरह रहे, वो कहते हैं, वो मूवी दिखाओगे ना अतिथि तुम कब जाओगे, दो चार दिन रह गए तो ठीक है, एक हफ्ते रह गए तो चलेगा, 15 दिन तो थोड़ा खींचतान करके चला लेंगे, उसके बाद तो मिजरेबल हो जाता है। ये बाहर की चीजों को अंदर आत्मसात करना, जैसे ही आप किसी फॉरेन चीज को अपने अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं तो इवन आपकी बॉडी में भी हलचल रिएक्शन आने लगता है। प्यार आपका नेचर है, नफरत आपका रिएक्शन होता है, शांत होना आपका नेचर है, गुस्सा करना आपकी रिएक्शन होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप एक महीने तक, एक हफ्ते तक, 24 घंटे आपके गुस्से में आप रहे हो, रह ही नहीं सकते आप, पर आप चाहो शांत होकर के अगर कोशिश करते, 24 घंटे तो आप रहते भी होंगे पर पूरी जिंदगी आप शांत होकर रह सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर अगर आप 24 घंटे कंटिन्यूअसली गुस्से में रहते हैं तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो आपके अंदर की गेस्ट क्वालिटी है। आप अपने घर में गेस्ट को इतना भाव नहीं दे सकते, इतने क्लोज नहीं कर सकते। आप दुनिया से प्रेम करके पूरी जिंदगी बिता सकते हैं पर पूरी दुनिया से नफरत करके आप एक मिनट नहीं रुक सकते, कहीं ना कहीं आप पिघल जाते हैं। इसीलिए आप अपने थोड़ा कभी शांति से बैठेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये आपके अपने नेचुरल क्वालिटीज क्या है और कौन से जो हम हमारे गेस्ट क्वालिटी हैं, जो अतिथि हैं, बाहर से आए हुए हैं, जिनके ना होने से आपके घर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैमिली मेंबर घर में ना हो तो आपको फर्क पड़ता है, गेस्ट ना हो फर्क नहीं पड़ता। आप शांत नहीं है तो आपको फर्क पड़ता है, पर शांत है एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। तो घृणा बाहर से आता है हमारे लाइफ में, और अगर आप कुछ कर सकते हैं, आपको चाहिए कि मैं बड़ा प्रेमी बन जाऊं, सबसे प्यार करूं, सबसे अच्छे भाव रखूं, आनंद से हमेशा भरा रहूं, 24 घंटे फुल ऑफ हैप्पीनेस रहूं, खुश रहूं, तो आपको खुशी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो आपका बाय नेचर आपके अंदर वो है। तो क्या करने की जरूरत है, जो उसको रोकता है उसको हटाने की जरूरत है। स्ट्रीम, ये झरना बह रही है, एक बड़ा सा रॉक या पत्थर उसके सामने आ जाता है तो पानी रुक जाता है। पानी को बहाने के लिए आपको नया पानी क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, झरने में जो पत्थर गिरा पड़ा है उस पत्थर को हटा दीजिए, पानी अपने आप बहेगी। आपका प्रेम, आपका भलापन, आपका अच्छाई, ये उस स्ट्रीम के वाटर, फ्लो ऑफ वाटर की तरह है जो कंटिन्यूअसली बहती है और बाय नेचर बहती है, आपको उसके लिए पैदा करने की जरूरत नहीं होती है। अगर कभी लगे कि मेरे अंदर की खुशी का, खुशी की झरना सूख गई है, प्यार का फ्लो कम हो गया है, तो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्यार को दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको आप हटा दीजिए। और वो कौन है, वो नफरत है। मंत्र कहता है नफरत नष्ट हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे, प्रेम होगा नहीं बोला, क्योंकि प्रेम तो बाय नेचर आपके अंदर है। प्यार और नफरत का रिश्ता ऐसे ही है जैसे क्लाउड और सन है। अगर धूप आप तक नहीं पहुंचता, सनशाइन आप तक नहीं पहुंचता, इसका अर्थ नहीं है कि सूरज नहीं है, इसलिए कि आकाश जो है वो क्लाउडी है। क्या आप कर सकते हैं अपने तक धूप लाने के लिए? क्लाउड को हटा दें तो धूप आ जाएगा। और कुछ आप नहीं करने की जरूरत है। आप दुनिया को बदल नहीं सकते, अपने अंदर को बदल सकते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्लाउड को कैसे हटाएंगे, नफरत को कैसे हटाएंगे, वो तो सेकंड टॉपिक होगा। फर्स्ट टॉपिक तो समझ जाएं कि हमारी रियलिटी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हम अच्छे नहीं हो पा रहे, खुश नहीं है, हमारे अंदर की प्यार की झरना सूख गई है, खुशी की झरना सूख गई है, मस्ती की झरना सूख गई है, तो ध्यान रखिए कि कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कोई बादल ढक रखा है सूरज की रोशनी को, और अगर आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर सॉल्यूशन बड़ा आसान है। फिर तो नेचुरली वो निकलने लगेगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिस दिन आपको अंदर से प्यार से आप भर जाएं, खुशी से भर जाएं, कभी कभी आप सुबह देखते हैं, सुबह आप उठते हैं बड़े अच्छे मूड में हैं, या ऑफिस से घर आए बड़े अच्छे मूड में हैं, सब कुछ आपको अच्छा अच्छा लगता है, और आए देखा बच्चे ने कुछ तोड़ फोड़ कर रखा था, टीवी भी टूट गई थी, बर्तने टूट गई थी, आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हल्की सी इरिटेट होंगे, पूछेंगे क्या हुआ, ओके कोई बात नहीं। और वही इंसिडेंट उस दिन हुआ जिस दिन आप ऑफिस से आए, बॉस ने कुछ दो चार धड़की लगा दी थी, रास्ते में ट्रैफिक्स बहुत मिल गए थे, एग्जॉस्टेड होकर के दरवाजा खोले, अंदर बैठे, देखा कुछ टूटा फूटा भी नहीं है, ऐसा सिर्फ एक ग्लास टूटा पड़ा है, टीवी भी नहीं टूटी थी, तो आपके गुस्से आसमान पर है। रिएक्शन दोनों जगह अलग अलग हुआ, क्योंकि अंदर से आप कैसा है वही बाहर निकलता है। जब आप अंदर से बहुत लाइट हार्टेड हैं, खुश हैं, तो चीजें आपको बड़े हल्की हल्की लगेगी, ठीक लगेगा, कोई बात नहीं। तो जब आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खराब लग रहा है, अंदर कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन है। अगर लगे कि पति या पत्नी से बन नहीं रही है, पति ज्यादा ही खराब दिख रहा है आज, पत्नी कुछ ज्यादा ही खराब दिखती है, तो अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो पति पत्नी तो वही है। तो अपने अंदर जब हम, ऐसा नहीं कि हम उसको कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारी चीजों से हमें रोज सामना करना पड़ता है, तो माइंड उसी हिसाब से बदलता है, पर उसको नोट करने की जरूरत होती है। और अगर अंदर हम कभी क्लियर हो गए, क्रिस्टल हो गए, मिरर की तरह बन गए, बिल्कुल साफ सुथरे, तो फिर रिफ्लेक्शन वैसा ही सामने आने लगता है। अगर मेरा मन इस तरह के गलत खराब इमोशन से दूर हट जाए, मतलब प्यूरिफाइड हो जाए, फिर मन उसी की तरह होगा जैसे एक मिरर होता है। मिरर के सामने आप खड़े होते हैं ना, तो आप खुद को देख सकते हैं। मन जब बिल्कुल निर्मल हो जाए, क्रिस्टल हो जाए, कोई डस्ट ना हो, धूली ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप अपने आप को ठीक से देख सकते हैं। और जैसे ही आप अपने आप को देखने लगेंगे, अपनी असलियत को देखने पाएंगे, आप जैसा भी है वैसा। इसी तरह अगर मैं अपने आप को मिरर बना दूं, फिर दुनिया को मैं अपने अंदर देखूंगा एज इट इज। वो क्या है दुनिया? दुनिया वैसी है जैसे मैं हूं। मेरे अंदर एक आत्मा है तो उसके अंदर भी आत्मा है, मुझे दर्द होता है तो उसको भी दर्द होता है जिससे मैं डांटता हूं, मुझे बुरा लगता है कोई मेरे साथ ट्रिक करता है तो उसको भी बुरा लगता होगा जिसके साथ मैं ट्रिक करता हूं, मुझे अच्छा लगता है अगर कोई मेरे से ठीक से बिहेव करे तो दूसरों को भी अच्छा लगता होगा जब मैं दूसरों से ठीक से बिहेव करता हूं। फिर मैं दूसरों में खुद को देखने लगूंगा क्योंकि दूसरे मुझ में देखने लगेंगे। अगर कभी कभी क्यों ज्यादातर लोगों को हमेशा, आपको अगर ईश्वर कहीं दिखता नहीं बाहर में 30 40 50 60 साल की पूजा पाठ हवन होम मंदिर जाना तपस्या मेडिटेशन सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको ईश्वर कहीं दिखता नहीं है, इसका अर्थ नहीं कि ईश्वर नहीं है, इसका अंदर है कि आपको अंदर भी नहीं दिखा। खुद के अंदर जिस दिन आप देख लोगे उसको, फिर आपको सब में दिखने लगेगा, फिर तो आपको कोई मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अब तो आपको घर भी बाहर भी सब जगह वो दिखने लगेगा। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल प्राइज मिला, गीतांजलि के पुस्तक पर एक काव्य है, पोएट्री है, और गीतांजलि बेसिकली उपनिषद का एक ट्रांसलेशन टाइप का है, शैडो उसमें पड़ता है, छाया है उस काव्य में, उपनिषद की छाया है, आत्मा की परमात्मा की। वो ग्लोबलाइजेशन, वो मार्केटिंग वाला ग्लोबलाइजेशन नहीं, मतलब सारी दुनिया मेरा है, मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, स्पिरिचुअली हम ग्लोबलाइज्ड जब होते हैं। तो रविंद्रनाथ को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला तो बड़े खुश थे। उनके सामने एक बुजुर्ग रहता था, 80-85 साल के होंगे, बहुत वाइज मैन है, बहुत ज्यादा विजडम है, बूढ़े आदमी है, रिटायर्ड हैं। वो पुराने जमाने के घर होते थे ना, घर के सामने बरंडा होता है, सुबह हुआ बरंडे में बैठ गए, वो गांव में जब जो लोग जाते आते रहते हैं, नमस्ते कैसे हो, बातचीत चलती है। तो जैसे ही रविंद्रनाथ जी वॉक करने निकले, कहीं बाहर निकले, उनको बुलाते थे, इधर आओ, तूने ये गीतांजलि लिखी है? बोली जी लिखी है, जो लिखा है मन से, ये जो लिखा है सब तुमने एक्सपीरियंस किया है? अब वो ना बोल पाए कि हां या ना, अगर बोले नहीं तो बड़ा सुपरफिशियल होगा, अगर हां कहें तो गिल्टी फीलिंग होती है, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। पर जब तक रविंद्र जी आंसर ना दें, वो बुजुर्ग हमेशा पीछे पड़ा रहता था, जब भी उनको देखता था डंडा पकड़ के, हां जी गीतांजलि पर बड़ा अवार्ड मिल गया, बड़ा खुश हो, दिल से लिखे हो। तो रविंद्रनाथ जी को इतना परेशान किया वो बुजुर्ग आदमी, जब देखे पूछ ले, अब उनसे डर लगने लगा, दरवाजा खोले तो देखे बरंडे के बाहर तो नहीं बैठा है, नहीं पूछ लेगा, बहुत सारे होते हैं ऐसे आपके रिश्तेदार में, नेबरहुड में, यहां तो इस सिस्टम नहीं है पर भारत में होता है, मिल गया तो पूछ लेंगे, भाई क्या हुआ, तेरा जॉब चला गया था क्या हुआ? मतलब जॉब चले जाने पर जितना दुख नहीं है, पूछ पूछ के इतने परेशान कर देते हैं कि आप छुपने लगते हो भाई, जब तो कोई जॉब ना मिल जाए, परेशान हो गए तो छुपने लगे। एक दिन बहुत बारिश हो गई थी, बारिश होने के बाद धूप निकला हुआ था, रविंद्रनाथ जी ने सोचा चलो तो टहल के आ जाते हैं, टहलने निकले, दरवाजा खोल के देखा सामने बुजुर्ग आज नहीं बैठे थे, फटाफट भाग भाग करके बाहर से निकल गए, घूमने चले गए नदी के किनारे, घूमे फिरे, बहुत बारिश होने के कारण कुछ जगह कीचड़ बना हुआ था, धूप अच्छी तरह खिला हुआ था, नदी में पानी भरा हुआ था, जो तालाब थे पानी भरा हुआ था। पता नहीं क्यों उस दिन रविंद्रनाथ जी को कुछ अलग सा फीलिंग हुआ। कभी कभी आपको वही चीज आप रिपीटेडली देखते हैं पर अचानक कुछ आपको ज्ञान होता है। वो धूप वो कीचड़ में भी पड़ा है, वो गंदगी में भी पड़ा है, साफ पानी में भी धूप उतना ही चमकता है, नाले में भी पानी है, छोटे से घास में भी धूप पड़ा है, बड़े पेड़ में भी धूप पड़ा है, धूप तो हमेशा पड़ता है, इसमें नई बात क्या है। पर उस दिन रविंद्रनाथ को कुछ रियलाइज हुआ, वो कुछ अजीब सी एक्सपीरियंस लेकर वापस आए, घर के अंदर नहीं गए, वो बरंडे के पास खड़े रहे, वो बुजुर्ग कहां है, पर कमाल है कि आज वो बुजुर्ग बैठे ही नहीं थे, आज रविंद्रनाथ जी खड़े रहे। वो बुजुर्ग कब बाहर निकलेंगे, थोड़ी देर के बाद वो बुजुर्ग बाहर निकले, रविंद्रनाथ ने पूछा, आज नहीं पूछोगे कि वो तुमने जो लिखा उसका कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है। बुजुर्ग ने मुंह को ठीक से देखा, बोले नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुझे अब पता चल चुका है। क्या पता लग चुका है, रविंद्रनाथ जी देख लिखते हैं, मैंने तो शास्त्रों को पढ़ा, मेरे अंदर वो टैलेंट थी, प्रतिभा थी, मैंने कविता लिख दी थी, पर वो कविता को मैंने उस दिन एक्सपीरियंस किया जो रोज देखता था इंद्रियों से, उस दिन मैंने फील किया कि सूरज की रोशनी वो कीचड़ में भी पड़ती है, पानी साफ में भी पड़ता है, गंदे में भी, अच्छे में भी, सब जगह वो परमात्मा की जो रोशनी है वो उन सब में है, अच्छे में भी, खराब में भी, चोरों में भी, डाकू में भी, साधु में भी, वो उसकी वो कीड़े में भी है, चींटी में भी है, इंसान में भी है, सब जगह है। जिस दिन हम फील करने लग जाए कि वो परमात्मा सब जगह है, वो मेरे में भी है, आपके भी अंदर है, फिर आप किससे नफरत करोगे और किससे प्यार करोगे। वो जो प्यार होता है वो आपकी उस फाउंटेन ऑफ डिविनिटी से निकलता है, आत्मा से निकलती है, उस अनुभव से निकलता है जो आप रियली हो। बाकी की चीजें हम आगे बताएंगे आपको, आज कुछ दूसरे प्रोग्राम है तो इसी बात को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति, शांति।